एक फकीरनी जैसी लड़की जिसकी कोई औकात नहीं। मैं उसे अपने भाई के करीब नहीं देख सकती। उसने लैपटॉप धीरे से बंद कर दिया। स्क्रीन काली हो गई, लेकिन उसके अंदर का खेल अब शुरू हुआ था। उधर अपने कमरे में अरमान बेचैन था। वो बार बार वही बात सोच रहा था, अगर मैं वहां नहीं था तो ये सब कैसे हुआ? रेहान झूठ क्यों बोलेगा? उसके दिल में शक की एक चिंगारी चल चुकी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सच उसके बिल्कुल पास है, बस एक दीवार के पीछे, और उस दीवार का नाम है माहिरा। अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां सच सामने आ सकता था, लेकिन किसी ने उसे छुपाने का फैसला कर लिया था। और अक्सर कहानियां वहीं सबसे खतरनाक बनती हैं जहां सच जानबूझकर दबा दिया जाए। माहिरा ने बड़ी सफाई से सीसीटीवी की कुछ अहम फुटेज डिलीट कर दी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान की, जैसे उसने कोई बड़ा खेल अपने हक में कर लिया हो। लेकिन ये सिर्फ एक राज छुपाने के लिए नहीं था, वो इस सच का इस्तेमाल करने वाली थी अपने तलाक के लिए। कैसे, ये अभी किसी को नहीं पता था। माहिरा अपने दिमाग में कुछ बड़ा प्लान बना चुकी थी और सही वक्त का इंतजार कर रही थी। उधर नूर अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। छत को घूरते हुए उसके दिमाग में बार बार वही चेहरे घूम रहे थे, अरमान, रेहान और वो सब लोग जिन पर उसने कभी भरोसा किया था। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। मैंने तो उसे सच्चे दिल से चाहा था, उसने खुद से धीरे से कहा। अरमान की बातें, उसका साथ, उसके वादे, सब कुछ एक एक करके उसके सामने आ रहा था। लेकिन अब हर याद में मिठास नहीं, सिर्फ कड़वाहट रह गई थी। कैसा इंसान था वो? नूर ने होंठ भींच लिए, जिसने मुझे पाने के लिए झूठ बोला, नाटक किया, यहां तक कि जहर खाने का ड्रामा भी किया। उसकी आवाज टूट गई। और मैं उस पर यकीन करती रही। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे। उसे लग रहा था जैसे उसने खुद को ही धोखा दिया हो, अपने ही फैसलों से, अपने ही भरोसे से। कोई सच्चा नहीं था, उसने धीरे से कहा। न अरमान, न रेहान, न उनका परिवार। उसे याद आया कैसे हर बात, हर सच्चाई धीरे धीरे उसके सामने खुलती गई थी। सादिया, जिसे सब पहले से पता था, लेकिन नूर, वो तो बस मोहब्बत में अंधी हो गई थी। कमरे में सन्नाटा था और उस सन्नाटे में सिर्फ उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। नूर ने करवट बदली, आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई याद उसे फिर से जगा देती। काश उसने किसी पर भरोसा ही न किया होता। काश उसने अपने दिल की नहीं, अपने दिमाग की सुनी होती। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, इतना कि वो खुद को माफ भी नहीं कर पा रही थी। उस रात नूर ने सिर्फ लोगों को नहीं खोया था, उसने अपने अंदर का भरोसा भी खो दिया था। और शायद सबसे मुश्किल सफर अब शुरू होने वाला था, खुद को फिर से संभालने का। फैजान का फोन ना सादिया उठा रही थी, ना नूर का फोन लग रहा था, और माहिरा ने भी कॉल उठाना जरूरी नहीं समझा। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। आखिरकार वो खुद ही मिलने निकल पड़ा, लेकिन इस बार उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। अकादमी वाला सधा हुआ लुक नहीं, बल्कि वही पुराना अंदाज जैसे पहले हुआ करता था। जैसे ही वो घर के लॉन में दाखिल हुआ, ऊपर खिड़की से जुबेदा बेगम की नज़र उस पर पड़ गई। फैजान, उन्होंने हैरानी से खुद से कहा। वो जल्दी से अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ गई। उधर माहिरा भी अभी अभी उठकर नीचे आई थी। जुबेदा बेगम ने तुरंत कहा, फैजान आया है, अभी मैंने उसे अंदर आते देखा है। माहिरा ने बिना ज्यादा दिलचस्पी के कहा, तो मैं क्या करूं? जुबेदा बेगम ने उसे घूरा, फिर नरमी से समझाते हुए बोली, उससे तमीज से बात करना, समझी? कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। माहिरा के चेहरे पर हल्की सी तंज भरी मुस्कान आई। ठीक है, बदतमीजी नहीं करूंगी, उसने धीरे से कहा, लेकिन क्यों नहीं करूंगी, ये भी बता दीजिए। जुबेदा बेगम ने गहरी सांस ली। अब उनकी आवाज में मजबूरी साफ थी, क्योंकि अब मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगी, वो यहीं रहेगा। माहिरा चौंकी, क्या? असल में फैजान सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो इस घर की जरूरत बन चुका था। किचन की सब्जी से लेकर ग्रॉसरी तक, मोटर खराब हो जाए, लाइट चली जाए, गाड़ी खराब हो, पेट्रोल खत्म हो या कोई काम वाली ना आए, हर छोटी बड़ी परेशानी का हल था फैजान। उसके रहते घर में किसी को किसी चीज की चिंता नहीं रहती थी, लेकिन अब जब वो दूर होने लगा था तो हर कमी साफ महसूस हो रही थी, और जुबेदा बेगम के लिए ये सब संभालना मुश्किल होता जा रहा था। माहिरा ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई, बल्कि उसकी आंखों में एक अलग ही सोच चमक उठी। अच्छा, तो अब इसकी इतनी जरूरत है? वो बिना कुछ कहे गुस्से में बाहर निकल गई, लेकिन उसके दिमाग में एक नया प्लान बनने लगा था। उधर फैजान घर में आया जरूर था, लेकिन सीधा अरमान के हिस्से में नहीं गया। उसके कदम खुद ब खुद मुड़ गए रेहान के घर की तरफ। हॉल में रेहाना बेगम और सादिया बैठी थीं। सादिया का चेहरा थोड़ा फीका लग रहा था। फैजान को देखते ही रेहाना बेगम बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए, सादिया की तबीयत ठीक नहीं थी। फैजान तुरंत उनके पास गया, उसकी आंखों में फिक्र साफ झलक रही थी। क्या हुआ तुम्हें? उसने सादिया के पास बैठते हुए पूछा। ताई अम्मी ने बताया कि तबीयत ठीक नहीं थी। सादिया ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर सिर्फ बीमारी नहीं थी, कुछ छुपा हुआ सच भी था। नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, सादिया ने नजरें झुकाकर धीरे से कहा। फैजान ने उसे गौर से देखा। लेकिन ताई अम्मी ने तो कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सादिया चुप रही। उसकी खामोशी ही जैसे सबसे बड़ा जवाब थी। हॉल में एक अजीब सी गंभीरता छा गई थी। रेहाना बेगम भी चुप थीं। उनका चेहरा सख्त हो गया था। फैजान को समझ नहीं आ रहा था, आखिर हुआ क्या है? तुम्हारा सामान कहाँ है? रेहाना बेगम ने अचानक पूछा। फैजान थोड़ा चौंका। नहीं, मैं तो बस मिलने आया था। इतना सुनते ही सादिया के अंदर दबा गुस्सा फूट पड़ा। हाँ, मिलने ही आए हो ना, उसने तीखे लहजे में कहा, या फिर नूर के लिए लड़ने आए हो? फैजान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या, मैं नूर के लिए क्यों लड़ाई करूंगा? क्योंकि तुम्हें शौक है उसका वकील बनने का, सादिया ने गुस्से से कहा। उसी ने भेजा है ना तुम्हें यहाँ? अब फैजान सच में उलझ गया था। वो मुझे क्यों भेजेगी, वो तो यहाँ है ही, उसने कहा। एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम गया। क्या मतलब? रेहाना बेगम ने तेज नजरों से पूछा। फैजान की आंखों में साफ सवाल थे। एक मिनट, वो यहाँ नहीं है? सादिया का चेहरा गुस्से से और सख्त हो गया। नूर का नाम सुनते ही जैसे उसके अंदर फिर आग भड़क उठी। उधर अरमान अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। तभी दरवाजा खुला, माहिरा अंदर आई। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन आंखों में एक छुपी हुई चाल। तुमने कहा था ना कि तुम गेस्ट हाउस नहीं गए थे, माहिरा ने सीधा सवाल किया। अरमान ने बिना झिझक जवाब दिया। हाँ, और आज भी यही कहता हूँ, मैं नहीं गया था, माहिरा हल्का सा मुस्कुराई। लेकिन तुम्हारी गाड़ी तो गई थी, अरमान ने चौंककर उसकी तरफ देखा। व्हाट नॉनसेंस, क्या बातें कर रही हो? मैं नॉनसेंस बातें नहीं करती, माहिरा ने लैपटॉप उसकी तरफ बढ़ाया। खुद देख लो, सीसीटीवी फुटेज। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। गाड़ी गेस्ट हाउस के सामने आकर रुकती है। अरमान की सांस रुक गई। फिर दरवाजा खुलता है और गाड़ी से उतरता है फैजान। ये, अरमान के होंठ सूख गए, माहिरा तुरंत बोली। गया था नूर के साथ। नूर के साथ? अरमान ने जैसे खुद से दोहराया। और नहीं तो क्या, माहिरा ने बात को और हवा दी। इसीलिए तो नूर ने रेहान का हाथ पकड़ा, फैजान को बचाने के लिए। उसकी आवाज में पूरा यकीन था, जैसे वो सच बोल रही हो। बहुत कुछ चल रहा है उन दोनों के बीच, माहिरा ने धीमे लेकिन जहर भरे लहजे में कहा। बस हम ही बेवकूफ थे जो देख नहीं पाए। अरमान की मुट्ठियां भीज गईं। उसके दिमाग में सब कुछ उलझने लगा। नूर, फैजान, रेहान, क्या ये सब सच हो सकता है? नहीं, उसने खुद से कहा, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसके सामने सबूत था, या कम से कम उसे ऐसा ही दिखाया जा रहा था। यकीन नहीं है तो जाकर पूछ लो,